नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। लोकसभा में कल आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में अशांति फैलाने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री शाह ने कहा कि देश में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं रह सकता।
देश धर्मशाला नहीं, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहाँ आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी।
गृहमंत्री ने कहा कि आवर्जन और विदेशी विधेयक में देश में प्रवेश करने वाले प्रत्येक विदेशी पर नजर रखने के लिए एक विस्तृत और संरचित प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।
जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी। तो दोनों दृष्टि से मान्यवर ये बिल एक प्रकार से हमारे सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति करने वाला है।
इससे पहले चर्चा के शुरू में कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। बाद में लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य आवर्जन कानूनों का आधुनिकीकरण करना है। इसमें पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज, वीजा और पंजीकरण के संबंध में केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरकार सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करेगी। सहकारिता के माध्यम से संचालित ये सेवा उबर और ओला के मॉडल पर काम करेगी। लोकसभा में श्री शाह ने कहा कि ये कदम सहकार के समृद्धि के अनुरूप उठाया गया है।
3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे और कुछ ही महीनों में ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो टू व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और फोर व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा वो ड्राइवर के पास जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2025-26 में की गई सभी घोषणाओं को 2,05,017 करोड़ रुपए की प्रस्तावित धनराशि से धरातल पर क्रियान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कल विधानसभा में बजट अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के सदस्यों द्वारा कुछ विभागों का बजट कम करने बारे व्यक्त की गई चिंता पर सदन से अवगत करवाया कि वित्त वर्ष 2014-15 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 2,368 करोड़ रूपये था, जो कुल बजट का 3.82% था। वित्त वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट बढ़कर 10,540 करोड़ रूपये किया गया है, जो कुल बजट का 5.14% है। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2014-15 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का बजट 2,058 करोड़ रूपये था, जो कुल बजट का 3.32% था। वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का बजट बढ़कर 8,315 करोड़ रूपये किया गया है, जो कुल बजट का 4.5% है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार हर परिवार को छत मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए इस वर्ष के बजट अनुमान में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के लिए लगभग 2,444 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 605 करोड़ 30 लाख रुपए का 4 गुना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बजट भाषण में अपने उत्तर में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 11 नए मुख्य संकल्प रेखांकित किए हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में हरियाणा ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और 11 साल की विकास यात्रा को इस बजट के माध्यम से 3 गुना रफ्तार दी गई है। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष खानापूर्ति कर रहा था, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में पिछला एक दशक सुखद बदलाव का साक्षी रहा है। प्रदेश में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट के 11 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो हरियाणा के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाना, 2000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड बनाने की योजना, नशे के विरुद्ध संकल्प प्राधिकरण का गठन, मिशन हरियाणा 2047 के लिए टास्क फोर्स का गठन और नकली बीज व कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ बिल, गांवों में महिला चौपाल बनाने की शुरुआत शामिल है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।